शांति। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर एक। सभी अपने को सदा माया जीत प्रकृति जीत अनुभव करते हो। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहां ना कहां हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो, जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने, ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियां ऑर्डर में है या आगे पीछे होती है? ऑर्डर करो अभी और आए घंटे के बाद तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए। है मास्टर और शक्ति समय पर काम में ना आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो सदा चेक करो और फिर चेंज करो कौन कौन सी शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें सर्व शक्तियां जिसकी ऑर्डर पर चले। विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सभी अपने को सदा माया जीत सदा प्रकृति जीत अनुभव करते हो। जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे, समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज माया जीत बन जाएंगे। अगर सर्व शक्ति अपने कंट्रोल में नहीं है तो कहीं ना कहीं धोखा खाना पड़ेगा। तो मास्टर सर्व शक्तिवान अर्थात ही कंट्रोलिंग पावर हो। कंट्रोल करना अर्थात नियंत्रण, अपने वश में करना, नियंत्रण में करना, अपने काबू में करना। रूल करना अर्थात शासन करना, हुकूमत करना, राज करना। तो हमारा जो मार्ग है वो है कंट्रोल करने का और उसके बाद में शासन करने का। संसार में दो मार्ग है, एक है भोग, एक है दमन। हमारा है बीच का, जिसे कहा जाता है संयम। एक तरफ है भोग विलास, दूसरा एक है कि उसको दबा देना, वो है दमन। और तीसरा जो है वो है अंडरस्टैंडिंग, समझ। समझ के बाद आएगा संयम। संयम अर्थात नियंत्रण में रखना, नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग पावर। और कंट्रोलिंग पावर आने के बाद होगी फिर शासन करने की शक्ति आएगी। तो मार्ग हमारा है समझ का, कंट्रोल का और रूल करने का। किसको कंट्रोल करना है, किसको संयम करना है, संयमित करना है? इंद्रियों को। वश में किसको करना है? स्वयं को, स्वयं की देह को, स्वयं के इंद्रियों को। और उसके बाद में शासन, शासन करना है स्व पर। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व राज्य अधिकारी है। तो बाबा ने माया जीत के लिए कहा है कि जिसकी सर्व शक्ति या जिसके अधीन हो। माया जीत अर्थात सर्व शक्तियों को जो अपने अधीन रखे, सर्व शक्तियों को ऑर्डर में चलाए, मास्टर सर्व शक्तिमान। तो जैसा टाइटल है वैसा कर्म होना चाहिए। है मास्टर और शक्ति समय पर काम में ना आए तो कमजोर कहेंगे या मास्टर कहेंगे? तो बाबा ने कहा चेक करो और चेंज करो कौन कौन सी शक्ति समय पे कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? विश्व अधिकारी राज्य अधिकारी वही बन सकते हैं जिनमें कंट्रोलिंग पावर हो और रूलिंग पावर हो, स्वयं को नियंत्रण करने की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, स्वयं पर राज्य करने की शक्ति, रूलिंग पावर। तो ये दो शक्तियां हमारे अंदर हो। जिनमें ये दो शक्तियां या सर्व शक्तियां है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। वही माया जीत है और वही फिर प्रकृति जीत है। तो इसमें क्या क्या समान है, मैं माया जीत आत्मा हूं, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मुझ में रूलिंग पावर है और मुझ में कंट्रोलिंग पावर है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, मैं विश्व राज्य अधिकारी हूं। तो ये सब समान है। और शक्तियों के समान कौन कौन से है, ये सब शक्तियां है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्वशक्तियां जिसके अधीन हो, जब चाहे तब शक्ति आ जाए, कभी बाबा ने कहा बुलाने की भी आवश्यकता ना पड़े, ऑटोमेटिक कार्य करे, कोई अपमान कर रहा है तो ऑटोमेटिक सहन करने की शक्ति स्वतः ही आ जाए, बुलाना ना पड़े कि अभी मुझे इस आत्मा को सहन करना है। किसी का गलत व्यवहार और किसी के गलत शब्द ही आत्मा को सबसे ज्यादा दुख देते हैं। आत्मा डिस्टर्ब किससे होती है, दो ही चीजों से, व्यवहार और बोल, ये दो चीजें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं उसको। अब ये जब होगा, अब हमको सहन करना है, तो हमको ये समान वहां धारण करना है कि अभी मैं सहनशीलता की मूर्त हूं, मैं सहनशीलता का अवतार हूं। बाबा ने कहा स्वतः ही काम करे सर्वशक्तियां, समान हो, किसी की कमजोरी को देखते हुए स्वयं की कमजोरी समझ, उसे फैलाना नहीं, यहां समाने की आवश्यकता है, तो वो समाने की शक्ति भी स्वतः ही काम करे, समाने की शक्ति स्वतः ही काम करे, सहन करने की शक्ति स्वतः ही काम करे, कोई नई आत्मा आ रही है या कोई नई परिस्थिति आ रही है तो उसको परख सके, परखने की शक्ति स्वतः ही काम करे, और फिर निर्णय भी कर सके, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है वो भी हम स्वयं कर सके, विश्व कल्याण के कार्य में सहयोग दे सके। बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ये शक्तियां कोई स्थूल तो नहीं है, सूक्ष्म है सारी। मास्टर सर्वशक्तिवान सबसे ऊंचा समान है, केवल उसको रटना नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, रटने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसका असर होगा कुछ दिन, पर 10 दिन के बाद कब तक एक ही समान लिए रहोगे, एक ही समान लंबा समय तक नहीं चलता है, उसके गहराई में जाना पड़ेगा। एक ही समान कि हमको भगवान मिल गया, कितना समय, 10 साल लेके चलाओगे कि भगवान मिल गया, भगवान मिल गया, भगवान हमको पढ़ा रहा है, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 1 साल बाद में। समान ये जो नशा है, ये सूक्ष्म नशा है, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं वो तो सत्य है, परंतु इसकी गहराई में जाना है, इसकी सूक्ष्मता में जाना है, इसको नशे में परिवर्तन कर देना है ताकि वो परमानेंट रहे। केवल वो वाक्य परमानेंट नहीं रह सकता है कि हमको भगवान मिला, 10 साल तक ये नशा नहीं चल सकता है, उस नशे में स्थित हो जाए आत्मा, केवल वहां शब्द ना रहे, वो शब्द फिर अनुभव हो जाए, वो शब्द भाव बन जाए, वो शब्द अवचेतन मन में भावनाओं के रूप में समा जाए, तब वो शक्ति बनेगी। तब मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति क्या है कि जीत दिन भर परिस्थितियों के बीच में हम अचल, कल के वरदान में था ना, बाबा कहा और अचल, कारण को निवारण, बाबा कहा और अचल, इतना आसान है तो किस गहराई से कहना पड़ेगा फिर कि परिस्थितियां हलचल वाली और एक शब्द कहा और अचल हो गए। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्वशक्तियां, तुरंत जाना है, समेटना है स्वयं को, विनाश सामने खड़ा है, समेटने की शक्ति, स्वयं के कछुए के मिसल, स्वयं को क्या कहते हैं बाबा, कछुए की तरह समेट लेना स्वयं को, वो भी शक्ति आ जाए, विस्तार को सार कर ले आना स्वयं को। ये सारी शक्तियां कोई 8 नंबर नहीं है जो याद रखने हैं, केवल इनका स्वरूप बनना है, उनका स्वरूप जो है वही मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति है, तो वही प्रकृति जीत स्थिति है। प्रकृति क्या है, ये शरीर ही प्रकृति है, स्थूल प्रकृति 5 तत्व 5 महाभूत और ये शरीर भी तो प्रकृति है। प्रकृति जीत अर्थात जो देह का मालिक है, मैं इस देह की मालिक हूं, इस देह पर मेरा नियंत्रण है, आंखें क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, मुख क्या बोल रहे, आंखें इस शरीर में कौन देखता है, कौन सुनता है और कौन बोलता है, आत्मा बोलती है, आत्मा सुनता है, आत्मा करती है, सब कुछ आत्मा करती है। मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति अर्थात कान देखे आत्मा ना, कान सुने आत्मा नहीं, सुनने वाले केवल कान हो, आत्मा नहीं सुन रही, सुन रहे केवल कान आत्मा नहीं। वास्तव में सुनता कौन है? आत्मा। और श्रेष्ठ स्थिति क्या है? कि जिसमें आत्मा ना सुने केवल कान सुने। श्रेष्ठ स्थिति वो है कि जिसमें केवल आत्मा न देखे, केवल आंखें देख रही पर आत्मा नहीं देख रही है। वास्तविकता दूसरी है पर स्थिति हमारी है। आत्मा निर्लेप नहीं है ये वास्तविकता है, परंतु मैं निर्लेप आत्मा हूं ये हमारा समान है। किसी भी चीज का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। आंखें देख रही है पर देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, करते हुए न सुनना। अस्पर्श की जो अवस्था है वो है साक्षी अवस्था। साक्षी अवस्था अस्पर्श, स्पर्श नहीं कर रही है किसी को, वो है श्रेष्ठ अवस्था, वो है साक्षी अवस्था। उसमें स्थित रहना है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान अवस्था, जिसमें आजू बाजू के जो भी प्रकंपन है आत्मा को टच नहीं कर रहे कुछ भी, ना कर्म उसको स्पर्श कर रहे, अस्पर्श की अवस्था, ना ही कर्मों का परिणाम उसको स्पर्श कर रहा है। बाबा ने कभी कहा है कर्मातीत, अर्थात न कर्म स्पर्श करे, न कर्म टच करे, न कर्म का परिणाम टच करे। कर्म का परिणाम स्पर्श न करना ये उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि वो हमको प्रभावित करता है। हमने कर्म किया, सफलता मिली तो खुशी, सफलता नहीं मिली तो दुख, तुरंत प्रभाव आता है उसका। उससे भी मुक्त अस्पर्श की अवस्था। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो, सोचना कहना और करना समान। वैसे तो जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान और करने में कभी विजयी कभी कम, तो कहने और करने में फर्क हो गया ना, तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो, दूसरे भी अनुभव करे, दूसरे भी समझे कि यह आत्माएं कुछ न्यारी है। चाहे हजारों लोग हो लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ये अलौकिक जन्म है ना, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो, लोग समझते हैं कि यह न्यारे है, या समझते हम जैसे है वैसे ये है, तो लोगों को लगे ये अलौकिक लोग है, न्यारे लोग है, अल्लाह लोग है। न्यारे बनने की निशानी, न्यारा अर्थात अलग, न्यारा अर्थात डिटैच, न्यारा अर्थात भिन्न, न्यारा अर्थात सेपरेट, पृथक, न्यारापन, भिन्नता, पृथक्य, सेपरेट, ये अलग, परे। तो न्यारा बनने की निशानी है, जितना प्यारा न्यारा बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सर्व से न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहां तक बने हैं यह चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना, न्यारे बनने की क्या युक्ति है? देह से अलग ही न्यारा बनना है। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा, न्यारा देह भान से अलग, देह भान से भिन्न, देह भान से डिटैच, देह भान से मुक्त, निर्माण, मेहमान। इस देह में अपने आप को मेहमान समझो, इस दुनिया में अपने आप को मेहमान समझो। बाबा ने कभी कहा है, मुरली का टाइटल था किसी, इस दुनिया में स्वयं को गेस्ट समझो और माया को गेट आउट करो, किसी मुरली का टाइटल है अव्यक्तवाणी। तो इस संसार में स्वयं को गेस्ट समझना, इस देह में भी स्वयं को मेहमान समझना। मेहमान का कहीं आकर्षण होता है? चार दिन के लिए अब हम कहीं गए तो हमको क्या चिंता क्या होती, मेहमान की क्या क्या बातें होती है। चार दिन के लिए अगर हम कहीं गए हैं मेहमान बनकर, तो हर चीज को इस्तेमाल करते समय ये रहता है कि ये मेरी नहीं है, एक ये घर मेरा नहीं है, ये याद रहता है। यहाँ की वस्तुएं मेरी नहीं है, फिर याद रहता है इस घर का मालिक कोई और है, फिर याद रहता है यहाँ से मुझे चार दिन के बाद जाना है। यहाँ की और कौन सी बातें रहती है? इसके लिए मेरे पहले जो यहाँ रहा, मेरे पहले यहाँ कोई और था, अभी मैं हूँ, मैं जब जाऊंगा तो कोई और होगा, अच्छा मेरे पहले जो गया जब जाते समय कितना अच्छा सब छोड़ के गया मेरे लिए, तो मैं भी जब यहां से जाऊं तो अच्छा ही छोड़ के जाऊं। ये चिंतन है किसके ऊपर? मेहमान के ऊपर। हाँ, और मैं इतने ही समय के लिए हूं, बस 4 ही दिन हूं यहाँ, टेम्पररी हूं, परमानेंट रेसिडेंस नहीं है मेरा। मेरा घर उधर है, वो बुला रहा है। यहाँ रहते भी उस घर की याद, यहाँ की हर वस्तु को देखते हुए भी, यहाँ का सोफा देखा तो कहेंगे हमारे घर का सोफा इससे अच्छा है, यहाँ के चित्र से हमारे घर के चित्र, यहाँ की हर वस्तु को देखते हुए उसकी याद आए, यहाँ के झाड़ को देखते हुए वो सृष्टि चक्र याद आए। यहाँ कुछ नहीं है, वो स्वत ही स्वभावतः नष्ट मोह की स्थिति है। वो प्रयत्न नहीं कर रहा है, उसको पता है मैं जहां से आया हूँ यहाँ से बहुत अच्छा है। यहाँ तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यहाँ जन्म है उसमें भी दुख है, जन्म है मृत्यु है उसमें भी दुख है, जरा है वृद्धावस्था है उसमें भी दुख है, व्याधि है रोग में भी दुख है, जन्म में मृत्यु में जरा में व्याधि में दुख दोषानुदर्शनम। और हमारा जो घर है वहां पर न जन्म है न मृत्यु है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अजर है, कोई बीमारी नहीं है उसको ऊपर। तो इस घर को देखते हुए वो घर याद है, यहाँ की वस्तुएं देखते हुए याद करना कि वहां तो बढ़िया बढ़िया वस्तु है। कौन सा घर फिर? निराकारी, और दूसरा और एक घर है हमारा वैकुंठ,
मधुबन।
अच्छा मधुबन भी घर है।
ब्रह्मा सर
नहीं तो छोड़ना है।
मधुबन रहेगा क्या सतयुग में? मधुबन रहेगा
सतयुग में? मधुबन नहीं रहेगा, लेकिन मधुबन की क्वालिफिकेशन
रहेगी, कुछ नहीं रहेगा,
जाएगा।
सब कुछ नष्ट होते हुए देखने के लिए हमको स्वयं को तैयार करना है। इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है कुछ नहीं रहेगा, बीबी बच्चे पति पत्नी मित्र संबंधी घर संपत्ति बैंक बैलेंस
याद भी नहीं रहेगा,
मतलब कुछ नहीं रहेगा, मधुबन भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा।
आसमान में हो कहीं भी,
आसमान में हो, आकाश में हो, उड़ रहे हो, तैर रहे हो, मौत तो आनी है, कुछ नहीं छूटेगा। तो बाबा कहते हैं जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। सारा पुरुषार्थ है इस देह से परे चले जाना। देह भान से न्यारा, देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार,
आत्माभान में रहे,
आत्माभान में रहे, आत्मा के चिंतन में रहे। जैसे देह का चिंतन करने से देह याद आता है, देह के प्रति आसक्ति गहरी होती है, प्रगाढ़ होती है, घनी होती है, उसी तरह आत्मा का चिंतन करने से ही आत्मा अभिमानी अवस्था भी उतनी गहरी होगी, उतनी प्रगाढ़ होगी, उतनी घनी होगी। तो आत्मा चिंतन में रहना अर्थात आत्माभिमानी बनना, उससे धीरे धीरे देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार धीरे 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 स्वतः ही नष्ट होगा। तो बाबा ने कहा देह भान से न्यारा, तो अलौकिक हो गया ना। सदैव अपने को देखो, क्या देखो? देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन, बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। क्या प्रैक्टिस करना? मैं आत्मा अभी अभी इस तन में आई हूँ, कर्म किया और इस तन से अभी वापस। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। न्यारी अवस्था में स्थित होने से कर्म भी अच्छे होंगे। एक है आसक्ति से कर्म करना, प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना, और कर्म करने के बाद फिर आत्मा उससे छूट नहीं पाती है, क्योंकि उसकी उसका परिणाम भी उसको भोगना पड़ेगा फिर, अच्छा या बुरा। दूसरा है डिटैच्ड होकर कर्म करना, अभी अभी ये, अभी अभी वो, अभी अभी वो, किसी में कोई आसक्ति नहीं, ऐसी अवस्था हो। भीड़ में भी एकांत का अनुभव हो, अति व्यस्तता में भी गहनतम सॉलिट्यूड, एकांत का अनुभव, मौन का अनुभव, यह है योगी की अवस्था। जैसे विवेकानंद ने कभी कहा है ना कि अभी अभी जा रहे, अभी अभी खेतों में काम कर रहे, अभी अभी निकले वहां से गरीबों की सेवा कर रहे, अभी अभी वहां से निकले कोई रोगी है उसकी सेवा कर रहे, और अभी तुरंत आकर ध्यान में बैठ रहे। यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और सब में अवस्था एक। जो सुबह अमृत वेले योग की अवस्था है, वही कर्म में भी वही अवस्था है। कर्म भिन्न ना हो, कर्म ही योग हो जाए। यह है योगी की अवस्था। उसमें भी वही अनुभव, उसमें भी वही अनुभव और उसमें भी वही अनुभव। बैठ रहे तभी भी वही अनुभव, चल रहे फिर रहे तो भी वही अनुभव। यह है योगी की अवस्था, चलता फिरता योगी। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है ना। कौन सा डबल फायदा? बाप के प्यारे और विश्व के प्यारे। और विश्व के प्यारे नहीं बने तो विश्व ने प्यार नहीं किया तो फिर भी ठीक, बाप तो कर रहा है हो जाएंगे। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना, ये कितना बड़ा फायदा है। परमात्मा प्यार कर रहा है, किसको प्यार करेगा वो? योगियों को। सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? योगियों को। कभी सोचा था कि ऐसे अधिकारी बनेंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा यह स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। भगवान ने चुना है, भगवान ने प्यार के योग्य समझा। कहां कहां पढ़े थे कौन कौन पता नहीं, वहां वहां से उठा उठा कर लाया है उसने और प्यार का पात्र बनाया। यही भाग्य है। दुनिया तो ढूंढती रहती है और आप पात्र बन गए। दुनिया ढूंढ रही है, थक गई अभी तो धर्म के ठेकेदारों के पास जा जाके, स्थान से थक गई है, साधनों से थक गई है। सच्चा सोचती है कुछ और है सत्य, तुम्हारे पास आ रही है और तुम तो, तुम्हें तो पा लिया, वो ढूंढ रहे हैं। तो सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो हम उड़ेंगे, तो सब उड़ेंगे। और हम गिरेंगे तो सब गिरेंगे। हमारे मन में हलचल तो संसार के मन में हलचल। मधुबन निवासियों के मन में व्यर्थ तो संसार में भी व्यर्थ चलेगा। यहाँ एक हलचल तो वहां हिलेंगे, सेंटर भी हिलेंगे। तो यहाँ वालों के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। उड़ती कला पूर्वज, हम हलचल में तो संसार हलचल में। हमारे श्रेष्ठ संकल्प तो संसार की आत्माओं में भी अचानक से श्रेष्ठ संकल्प प्रवेश करेंगे। उनके बुद्धि में नए नए विचार आएंगे, हमारे मन में यहाँ आएंगे। तो उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, विश्व का कल्याण हो जाता है। तो विश्व के कल्याण की विधि क्या है? स्वयं को उड़ाना, स्वयं को ऊपर ले जाना, आत्मा को ऊपर ऊंची अवस्था में स्थित कर देना, ऊंची श्रेष्ठ महान संकल्पों में स्थित कर देना। यही विश्व की सेवा है। स्व की सेवा ही विश्व की सेवा हो जाएगी। अच्छा, सभी खुश रहते हो? सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसे भी हो, कैसा भी हो, लेकिन खुश रहना और खुश करना। कोई कैसा भी हो पर उसको खुश करना संभव है कि मुश्किल है?
मुश्किल संभव है
सबको खुश करना, मर्यादा अनुसार सुख देना। मर्यादा छोड़कर किसी को सुख देने का प्रयत्न नहीं करना, मर्यादा छोड़कर किसी को खुश करने का प्रयत्न नहीं करना। तो वो भी दुखी होगा और हम भी दुखी होंगे।
मर्यादा है ही आत्मा
मर्यादा, मतलब स्थूल मर्यादा है। स्थूल मर्यादा।